आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज्योति कुमारी है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है जनसंख्या। जनसंख्या मतलब जिसे हम इंग्लिश में पॉपुलेशन भी कहते हैं। पॉपुलेशन एक बहुत वेल नोन टॉपिक है चैप्टर के लिए भी और हमारी वैसे आम जिंदगी में भी। हम बचपन से इसके ऊपर एसेज वगैरह सब लिखते हुए आ रहे हैं। ये जो चैप्टर है वो बहुत इजी चैप्टर है। इसमें बस आपको जो तथ्य हैं वो बताए जाएंगे, तथ्य इन द सेंस जो आपको फैक्ट्स हैं वो बताए जाएंगे। लेकिन फिर भी ये जो विषय है, चाहे हम इसे कितनी ही टाइम से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अगर आज भी ये एक प्रॉब्लम की तरह हमारे सामने खड़ा है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर रही होंगी आज के समय में भी और पीछे बीते हुए समय में भी कि शायद ये प्रॉब्लम अब तक सॉल्व नहीं हो पा रही। ये उन्हीं कुछ चंद गिनी चुनी प्रॉब्लम में से है जो बहुत सालों तक जो है हमारे देश को जो है खाए जा रही है, लेकिन हम इस पे कोई भी कह सकते हैं ठोस इंतज़ाम इसके लिए नहीं कर पा रहे हैं। और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि गरीबी, गरीबी के बाद कह सकते हैं कि लिंग समानता, उसके अलावा महिला सशक्तिकरण, जनसंख्या, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहसें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन इनके तथ्य जो इतने सरल हैं उन्हें समझ करके उनका सॉल्यूशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जो है डिस्कस करेंगे। तो अपना स्टार्ट करते हैं नॉर्मल एक बुकिश लैंग्वेज में, नहीं नॉर्मल तरीके से, कि बेसिकली जनसंख्या जो है वो क्यों होता है और जनसंख्या जो वर्ड है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बता दूँ, जनसंख्या एक, हम अगर इसको देखें तो एक न्यूट्रल वर्ड है। न्यूट्रल वर्ड मतलब इसको हम ना ही नेगेटिव में कह सकते हैं और ना ही हम इसे पॉजिटिव में कह सकते हैं। इस वर्ड को अगर हम एक सही उसमें देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि क्या जनसंख्या एक ऐसा कारक है, एक ऐसा फैक्टर है जिससे किसी भी देश में गरीबी या कह सकते हैं उस देश के विकास या डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करती है, तो हाँ ये डेफिनेटली एक फैक्टर है। क्यों है, इसके लिए ये है मतलब कि अगर एक देश में जो उसकी जनसंख्या है, मतलब कि जो वहाँ के लोग हैं बहुत ज़्यादा सशक्त हैं, एजुकेटेड हैं, बिकॉज वहाँ का सिस्टम अच्छा है, तो वो जो जनसंख्या है वो एक तरीके से क्या हुआ, ह्यूमन रिसोर्स जो अपने बल पर पूरे देश का कह सकते हैं जो काबिल है वो कुछ ना कुछ काम भी कर सकता है और अपने देश को जो है वो अच्छी हालत में ला सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें वो जनसंख्या जो कि बिल्कुल जिसे कह सकते हैं कि उसको बेसिक चीज़ें भी नहीं है, जैसे इंडिया के बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ बेसिक कह सकते हैं खाना भी नहीं है, रहने जीने का जो एक होता है प्रॉपर फॉर्म, घर कपड़ा और मकान, वो तीनों चीज़ें जो है वो नहीं है अवेलेबल। तो फिर क्या होता है कि उस देश में जो इंसान अपनी नहीं मदद कर पा रहा वो देश की ग्रोथ में कैसे हिस्सेदारी दे पाएगा। और इसमें भी यही होता है कि गवर्निंग सिस्टम जो है वो इस तरीके का नहीं है या इस तरीके का फंक्शन नहीं कर पा रहा कि वो अपने खुद कह सकते हैं एक तरीके से ह्यूमन रिसोर्स बन पाए, है ना। तो ये दो एस्पेक्ट हो गए कि किस तरीके से जो है देश की जनसंख्या अगर पूरी तरीके से सुदृढ़ हो, मतलब कि सुदृढ़ मतलब कि बहुत ही अच्छे से कह सकते हैं कि लायक हो, स्किलफुल हो, तो वो जो है उस देश के लिए डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान देती है। लेकिन अगर ऐसी ना हो तो वो एकदम कहते हैं उल्टा इम्पैक्ट भी पड़ जाता है। तो ये दोनों ही एस्पेक्ट हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी है और एक नेगेटिव एस्पेक्ट में भी है। चैप्टर में कई बार ऐसी टॉपिक्स आएंगे जिसमें हाँ हम ये सोचेंगे कि क्या इस जगह पे जनसंख्या जो है उसे कंट्रोल करना ये अभी 2-3 सालों में ही हो सकता है पॉसिबल कि हाँ हम 2-3 सालों में इस चीज़ को कंट्रोल कर लें, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो इम्पैक्ट है, अगर हम 2-3 सालों में भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करें इन चीज़ों को, तो भी इसके जो है हमें रिजल्ट देखने में टाइम लगेगा। वो भी कह सकते हैं कि बड़ा अंतराल लगेगा, जैसे 10-20 साल अंतराल लगेगा, लेकिन चीज़ें जो है वो सुधरेंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कि 2011 में हमारी जनगणना जो हुई थी उसके अनुसार 5.7% भाग जो है राजस्थान क्षेत्र की बात कर रही हूँ, ये भारत क्षेत्र की नहीं, वो जो है राजस्थान में ही निवास करती है। मतलब कितना, 5.7% जो है वो राजस्थान रीजन में। ये आप बताइए अपनी समझ से कि क्या ये कम है या ज़्यादा है। ये कम है, इससे ज़्यादा भी और सारे जो प्रदेश है जैसे कि बिहार हो गया, बंगाल हो गया, केरल हो गया, इस जगह पे इससे भी ज़्यादा जो है सघन आबादी रहती है। लेकिन इसके पीछे के रीजंस क्या है, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो ज्योग्राफी का चैप्टर है, इसमें ज्योग्राफिक फैक्टर तो जरूर आएंगे कि जो राजस्थान की बनावट है, एक तो यहाँ मरुस्थल का एरिया बहुत ज्यादा है, मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान बहुत ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं और यहाँ का मौसम जो है वो शुष्क है। शुष्क मतलब कि गर्म, एकदम से जो गर्मी का टाइम होता है, गर्मी का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत हाई होता है, तो रात के समय शीतलहर सी चलती है, मतलब ठंडा टेम्परेचर होता है। तो जो कह सकते हैं ऑड इवन टेम्परेचर है, ये एक तरीके से इस पूरी जनसंख्या के जो कह सकते हैं फैक्टर को बहुत डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब इन द सेंस मतलब कि प्रभावित कर रहा है, किस तरीके से वो जानते हैं। मान लीजिए आपको दो जगह हम घूमने के लिए भेजे, एक जगह वो है जहाँ मौसम हमेशा सुहावना रहता है, जहाँ पे हर चीज मिलती है, वहाँ पे आप किसी भी चीज के लिए दूर तक भटकना नहीं होता, या फिर दूर तक ना भी भटके तो बहुत लिमिटेड सामान नहीं मिलता, हर चीज की वैरायटी है, और उसके अलावा सारे नेटवर्क है, मौसम बहुत अच्छा है, घूमने जा सकती हैं, चहल पहल है, हर चीज है। दूसरी जगह अगर आप जाएं तो वहाँ का मौसम आपको एकदम से गर्म मिलेगा, और उसके बाद वहाँ का जो पूरा ज्योग्राफिकल एरिया सुनसान सुनसान नहीं, मतलब कि फिर भी ठीक ठाक मिलेगा, मतलब ज्यादा दुकानें नहीं और लिमिटेड सामान, या फिर सामान मिल भी जाए वो वैरायटी नहीं मिलेगी जो आपको दूसरे इलाके में मिली थी। उसके अलावा बात करें कि रात के समय में अचानक से ठंड बढ़ जाए तो आप कौन सी जगह रहना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली जहाँ पे आपको हर चीज की फैसिलिटी बहुत आराम से मिल जाती है वहाँ। सेम यही चीज आती है राजस्थान और अन्य जो क्षेत्र है उसके मुकाबले, जिनका मैंने आपको बताया कि उस जगह पे जो है आबादी ज्यादा है, उनके यही कारण है। उनको कहते हैं मैदानी इलाके। मैदानी इलाके वो होते हैं जो नदी किनारे बसे हुए क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे पानी, उसके अलावा खेती, उपजाऊ भूमि, हर चीज जो है वो उपलब्ध होती है, तो उस जगह पे लोग या कह सकते हैं आबादी जो है वो ज्यादा बसती है। जबकि उस इलाके जहाँ रहना जीना कह सकते हैं थोड़ा मुश्किल है, उस जगह आबादी औसतन कम होती है, औसतन मतलब कि रेशियो में कम होती है। उसके बाद बात करते हैं कि जनगणना क्या होता है। जैसा कि इस वर्ड से ही पता चल रहा है, जन जन मतलब कि लोग, गणना मतलब कि गिनती, लोगों की गिनती। ये जो अटेम्प्ट किया गया था सबसे पहले, वो अटेम्प्ट हमारा 1872 में किया गया था, जबकि ये पूरा कंप्लीट हुआ था 1881 में। ये अंग्रेजों द्वारा कराया गया था, पर नहीं, इस चीज में एक और चीज नोट करने वाली ये है कि आज की डेट में, आज हमारी भारत सरकार जो जनगणना करवाती है, हर 10 साल में होती है, उसके पर्पस से मतलब कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है जनगणना कराने का, उससे अंग्रेज सरकार का ऑब्जेक्टिव अलग था। उनका मेन जानने का पर्पस ये था कि कितने ज्यादा लोग जो है ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और कितने ज्यादा शहरी, और उसमें भी कौन से लोग हैं, कितनी ज्यादा कह सकते हैं यहाँ पे धर्म है, और धर्म के हिसाब से कितने ज्यादा लोग जो है कह सकते हैं किस आबादी, किस जगह पे कितने ज्यादा इस धर्म के लोग रहते हैं, उस धर्म के लोग रहते हैं। तो ये बता दूं कि उनका जो था तरीका, वो तो प्रोग्रेस का तरीका था कि हाँ जनगणना करवा रहे थे, लेकिन उनके पीछे का जो पर्पस था वो बुरा था। इसीलिए जब हम एग्जाम्पल देते हैं ना कि डिबेट में, हिस्ट्री के कंटेक्स में चीज बता रही हूँ, वैसे एक एडिशनल नॉलेज, कि जब हम बात करते हैं अपने देश की, कह सकते हैं एक तरीके से कि हमने कब स्टार्ट किया जनगणना, हम कहते हैं इन्होंने, अंग्रेजों ने चीज पहले शुरू कर दी, तो हमें वहाँ इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो पर्पस था वो उनका बुरा था। जबकि भारत में जिस तरीके से कह सकते हैं गुलामी के साल झेले हैं, उसके बाद अगर उन्होंने ये चीज थोड़ी देर भी में भी शुरू की है, लेकिन उनका पर्पस अच्छा है, तो ये चीज ठीक है और इसे अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय कि हर चीज में नुक्स निकाला जाए। अब आगे बढ़ते हैं कि ये कौन सा विभाग जो है जनगणना करवाता है। भारतीय जनगणना विभाग है जो कि हर 10 वर्ष पर जनगणना कराती है। इसके बाद बात करें कि हमारा जो पूरा राज्य है राजस्थान, इसमें कितना प्रतिशत इलाका जो है वो कह सकते हैं ग्रामीण इलाका है। 75% इलाका जो है वो गांवों में रहता है, जबकि सिर्फ जो 25% जनसंख्या है वो शहरों में रहती है। इसका भी मैंने एक फैक्टर बता दिया जो हमने रिलेट किया था ना, कि मैदानी इलाके वर्सेस वो इलाके जो थोड़े कंफर्टेबल नहीं है, तो यही सेम चीज अब राजस्थान के फैक्टर में भी आ जाती है कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ सारी सुविधाएं क्योंकि उपलब्ध है, वो चंद कुछ ऐसे इलाके होंगे जो मैदानी इलाके में आते हैं, इसीलिए वहाँ पे आबादी ज्यादा है, वहाँ हर चीज की सुविधा है, स्कूल है, कॉलेज है, पीने के लिए पानी है, वहाँ रहने के लिए नौकरियां हैं, रहने के लिए घर है, नौकरियां हैं, हर चीज है, तो इसीलिए वहाँ पर जो है आबादी भी है। जबकि वो इलाके जो वहाँ पे इन सब चीजों की कह सकते हैं इतनी ज्यादा उपलब्धता नहीं है, वहाँ पे आबादी कम आती है। अब बात करते हैं कि जनसंख्या वितरण और घनत्व क्या है। जनसंख्या वितरण मतलब कि जगह के हिसाब से लोग कितने कितने, ऐसे कह सकते हैं वितरण, एक तरीके से फैलाव। पृथ्वी की सतह पर आबादी के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं, मतलब किस जगह पे कितने लोग जो है, कितने लोगों का फैलाव है, यही कहलाता है जनसंख्या वितरण। पृथ्वी पर जनसंख्या वितरण असमान है, और ये चीज तो आप ही मानते हैं कि हर जगह पे सेम लोग नहीं रहते, मतलब सेम नंबर में लोग नहीं रहते। इसका भी एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, वो भी कि आप सोचिए आपके घर में 5 सदस्य रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके पड़ोस परिवार में 5 ही लोग रहे, वो 6 भी हो सकते हैं, उसके बगल में 7 हो सकते हैं, उसके बगल में 8। तो ये जितना भी ये अनइवन सीक्वेंस है, या कह सकते हैं असमान है, वो एक तरीके से एग्जाम्पल है कि हर जगह जो है जनसंख्या वितरण अलग होता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे जगह है जिसको अगर हम वहाँ ज्यादा जनसंख्या पाई जाए तो उसे हम कह सकते हैं कि वो घने क्षेत्र है, और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अगर कम माने जाए तो उन्हें हम कहते हैं विरल क्षेत्र या विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र। उसके अलावा बात करते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व एक तरीके से घनत्व मतलब डेंसिटी, कि एक या कह सकते हैं कि हमारा जो 50 किलोमीटर का एरिया है, या इससे भी ज्यादा एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ कि जैसे राजस्थान में जनसंख्या घनत्व जो है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि बिहार में 1100 से अधिक है प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यानी कि इसमें एक चीज तो कॉमन आ गई है कि प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी जनसंख्या है। बिहार में मैंने बोला था कि जनसंख्या ज्यादा है, और किसके मुकाबले, राजस्थान के मुकाबले, और ये अंतर यहाँ पे दिख रहा है, पूरे कितने का अंतर है, 900। तो ये बहुत बड़ा गैप एक आ जाता है, जबकि आप देखें तो राजस्थान बड़ा स्टेट है, फिर भी। उसके बाद बात करते हैं कि इसके एक मापक क्या रहता है। इसका मापक रहता है टोटल जितनी जनसंख्या है, और उसके बाद उसे भाग देते हैं वर्ग किलोमीटर से। जो भी भाग देने के बाद आता है संख्या, उसको हम कहते हैं कि वो जनसंख्या घनत्व है, वर्ग किलोमीटर, इतनी जनसंख्या वर्ग किलोमीटर। जैसे कि इस सारणी में भी दिया हुआ है संख्या 1 की, कह सकते हैं इसमें जितने भी राजस्थान के हमारे क्षेत्र है, जिला है, उन सबकी आबादी लिखी हुई है, उनका जनघनत्व, जनघनत्व यानी कि वर्ग किलोमीटर अपॉन पूरी जनसंख्या, और उसके नीचे जो है जितना वर्ग किलोमीटर वो एरिया है, वो जगह, उसको देखे भाग किया हुआ है और तब उसका नंबर लिखा हुआ है। और उसके अलावा जनसंख्या, क्योंकि सिर्फ यही कि हमारे पूरे इंडिया की काउंट नहीं होती, स्टेट्स की भी होती है, तो उस बढ़ोतरी का जो दर है वो भी लिखा गया है। इसको एक तरीके से एनालाइज कीजिए, इसके अपना खुद का एक विजन बनाइए कि कौन से ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ का जो है निरंतर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि जमीन तो नहीं बढ़ सकती किसी भी एरिया की, सिर्फ वहाँ की जनसंख्या बढ़ सकती है जो उस जगह के लिए दिक्कत देगी। हालांकि राजस्थान की जनसंख्या कम है, लेकिन उसके हिसाब से रहने के जो चीज स्रोत है वो भी तो कम है। तो इसीलिए इन सब चीजों को एनालाइज कीजिए कि ये कितने ज्यादा इफेक्टिव है और कितने ज्यादा डिफेक्टिव है। उसके बाद बात करते हैं कि जनसंख्या, जो कि हमारा कह सकते हैं टॉपिक ही है, वो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व में औसत कितने वर्ग किलोमीटर की प्रति व्यक्ति जो है एक जगह पे मिलती है। जैसे कि अगर बात करें हम अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, धौलपुर, जयकर, टोंक, सवाई, और भी बहुत सारे राज्य के जिले हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, जबकि उस जगह पे जैसे कि हमारा जैसलमेर है, वहाँ पे 1% है। इतना बड़ा गैप जो एक ही राज्य में आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? ये इसलिए है क्योंकि ये जो इलाके हैं जिसके मैंने अभी नाम लिए हैं, वो सारे मैदानी क्षेत्र हैं, और ये राज्य से और दूसरे राज्यों से भी सटे हुए क्षेत्र हैं। ये क्योंकि पूर्वी राज्य है, मतलब उस राज्य में पूरा जो राजस्थान है, जो कि पश्चिम की साइड की तरफ है, उस राज्य के अंदर पूर्वी साइड, जो पूर्वी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, ये सारे जो जिले हैं उस तरफ के हैं। इसीलिए ये अदर स्टेट से भी जो है पास पड़ते हैं, जैसे जयपुर है वो दिल्ली से नजदीक पड़ता है, इसीलिए उस जगह पे सबसे ज्यादा आबादी है। और ये एक रीजन है कि वहाँ पे 33% जो आबादी है वो इन्हीं सारी जगहों पे क्यों रुकती है। हमने खुद भी देखा है कि दूसरे बाहर के जो लोग आते हैं वो ज्यादातर इन्हीं इलाकों में घूमने के लिए रहते हैं, जो कि जैसलमेर और इस तरीके के जितने भी इलाके हैं, जो थोड़े से पहाड़ी पठारी इलाके हैं, उस जगह पे टूरिस्ट या टूरिज्म के लिए ही जाते हैं, रहने या स्टे करने के लिए ज्यादा वो वहाँ पे नहीं रुकते। ये भी इसी चीज का रीजन है, क्योंकि वहाँ मैदानी इलाके नहीं है इसलिए। उसके बाद बात करते हैं कि किस तरीके से जनसंख्या वृद्धि जो है वो सिर्फ इसके इस कंटेक्स्ट के लिए तो मैं कहूंगी कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, वो पूरी इंडिया के लिए जो है एक बड़ा मेजर टास्क है, जिसके लिए हमेशा जो है प्लानिंग तो की जाती है पर फिर भी वो रिजल्ट्स नहीं आ पाते। और इवन ये फैक्ट जो है वो हमारी बुक में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि किस तरीके से जो है जब बिगनिंग में मतलब कि एक अनुमान है, एक तरीके से एज्यूम किया गया है कि ईसा सदी में जो सबसे पहला वर्ष था उसमें जो है कुल आबादी 17 करोड़ के लगभग थी पूरे वर्ल्ड की, एक वर्ल्ड लेवल पे बात हो रही है। लेकिन आज अगर हम बात करें तो वो 700 करोड़ हो चुकी है, मतलब 17 करोड़ से 700 करोड़। लेकिन पृथ्वी की जनसंख्या तो इस तरीके से बढ़ी, लेकिन क्या इस तरीके से हमारे जितने भी रिसोर्सेस है वो बढ़े? और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये जो जनसंख्या का जो एक पूरा कह सकते हैं फ्लो है ये फिर भी कंट्रोल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम सारे प्रॉब्लम पढ़ते हैं लेकिन फिर भी हमने इसमें खासा कोई बदलाव देखा नहीं है। ये कह सकते हैं बहुत बुकिश लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो जनसंख्या परिवर्तन, जो कि अचानक से एक कह सकते हैं इतने से इतना हो जाना, जैसे कि 17 करोड़ से सीधे 700 करोड़ हो जाना, कह सकते हैं जनसंख्या परिवर्तन होता है, जो कि किसी निश्चित अवधि मतलब टाइम पीरियड में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। अब इस जनसंख्या परिवर्तन की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ यही नहीं है कि जनसंख्या बढ़ती हुए में परिवर्तित होती है, ये घटते हुए में भी होती है। इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जनसंख्या परिवर्तन के। अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि जब हमारे इंडिया में, भारत में जब उत्तराखंड में बाढ़ आई थी तो क्या हुआ था, अचानक से कह सकते हैं कितने लोग मरे थे उत्तराखंड में। तो कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा भी कारण होती है कि जनसंख्या तो ठीक है और बढ़ती जा रही है, वो एक कारण हो गया जनसंख्या बढ़ने का, एक कारण है कि यहाँ भी जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन जनसंख्या कम होने का रीजन जो होता है वो बहुत बर्बरतापूर्व होता है कई बार, या तो जिस देश में लगातार लोग मर रहे हैं जैसे चमकी बुखार, जिसकी वजह से कितने सारे बच्चे जो हैं 400 के ऊपर बच्चे जो हैं मर गए। तो ये एक रीज़न है कि किस तरीके से जनसंख्या जो है वो भी एक लिमिटेड एज ग्रुप के जो बच्चे थे वो मर गए। उसके अलावा केरल या चेन्नई में आई बाढ़, बिहार में आई बाढ़ जो हर साल आती है, बट आयरनी ऑफ द स्टेट की वहाँ तक किसी का ध्यान नहीं जाता, तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन ये जितने भी स्टेट हैं उन सब में बिहार या फिर राजस्थान में सूखा, महाराष्ट्र में सूखा, इस तरीके से जितने लोग मरते हैं ये जनसंख्या का घटना है। मतलब कि एक तरीके से हम लोग जनसंख्या को पॉजिटिव वे में रोक नहीं पा रहे और दूसरी तरफ से जनसंख्या जो है वो गलत रीजंस की वजह से घट रही है। मतलब घट तो रही है, ये ठीक चीज़ है, लेकिन गलत तरीके से घट रही है। वो हमारे एफर्ट करने पे या लोगों को जागरूक करने से नहीं, जबकि वो महामारियों से या आपदाओं से घट रही है। लेकिन दोनों तरह से जो घट रही है और जिस अंतराल में घट रही है हम उसको तो जनसंख्या परिवर्तन बोलेंगे। पर इन फैक्टरों पे आप क्लास में जब भी बैठें तो इन पे डिबेट जरूर कीजिएगा कि क्या रीज़न है कि ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं और हर साल होती हैं लेकिन फिर भी हम इन पे कुछ कर नहीं पाते। स्कूल के छात्र या आने वाले जो भी हमारे देश के भविष्य हैं, आप अपनी प्रकृति को जो है बचाने के लिए क्या क्या करेंगे? जैसे कि हम बेशक इस टाइम को नहीं रोक सकते लेकिन फिर भी हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, हम खुद जागरूक हो सकते हैं, या फिर इस आपदा को रोकने के लिए हम पेड़ लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, प्रकृति को कह सकते हैं कंजर्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे ही फोकस करते हुए कि किस तरीके से जो है अगर हम जनसंख्या बढ़ रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अगर आप किसी से कुछ ले रहे हैं तो आप इसे शुद्ध हिंदी में एकदम क्या बोलेंगे? ऋण। तो ये ऋणात्मक वृद्धि, वृद्धि मतलब कि बढ़ना, क्योंकि ये सारी जो लैंग्वेज है, टर्म्स हैं, ये आपको एज इट इज पेपर में लिखनी होंगी, तो इसीलिए ये जो टर्म्स हैं बेशक समझने के लिए इजी लैंग्वेज हो लेकिन ये टर्म्स याद करनी पड़ेंगी। ऋणात्मक वृद्धि मतलब कि लेना और धनात्मक वृद्धि मतलब कि देना, किसी को दे रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम अपने टॉपिक के साथ, जिसमें स्पिंक बॉक्स में बहुत अच्छी तरीके से आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है कि किस तरीके से जनसंख्या वृद्धि जो है वो भी राजस्थान के कंटेक्स में, वृद्धि मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का पूरा अच्छे से डेटा देखते हुए इसे एनालाइज कीजिए और अपने दोस्तों के साथ समझिए। जनसंख्या वृद्धि के 3 कारक होते हैं। अब आ जाइए फैक्टर्स पे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से जो है जनसंख्या में वृद्धि होती है। हमने घटने के कारण तो अभी डिस्कस कर लिए कि क्या क्या होते हैं, वृद्धि के अब क्या क्या कारण होते हैं। एक तो जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन आप सब समझते हैं, जन मतलब बर्थ, मतलब कि अगर मैं एग्जांपल दूं इसका बहुत सही, तो 1999 में, आप लोग तो खैर छोटे हैं, लेकिन ये बहुत उस टाइम पे एक पेपर में आया था कि 1999 जो है वो जनसंख्या विस्फोट का टाइम है, मतलब कि उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो है बच्चों का जन्म हुआ था। ये कह सकते हैं जनसंख्या परिवर्तन का एक वो भी है, अचानक से इतने ज्यादा बच्चों का जन्म हुआ, तो वो जनसंख्या परिवर्तन वाला टर्म भी यूज कर सकते हैं वहां पे। उसके अलावा मृत्यु, अगर मृत्यु दर जो है वो बहुत कम हो जाए और जन्म दर जो है वो बढ़ जाए, तो भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। और प्रवास, अगर एक जगह पे बहुत ज्यादा लोग आ जाए, या फिर एक देश से बहुत ज्यादा लोग हमारे देश में शरणार्थी बन जाए और उसके बाद हम उसे अपने देश में कह सकते हैं एक्सेप्ट कर लें एज अ सिटीजन, क्योंकि बहुत सालों से शरणार्थी रहे, तो क्या होगा, प्रवास की वजह से जो है पॉपुलेशन बढ़ेगी। जैसा कि आपने पहले सुना होगा, अपने मम्मी पापा से भी या किताबों में पढ़ा होगा, कि बांग्लादेश वॉर के टाइम पे कितने सारे जो है बांग्लादेश से प्रवासी भारत आए थे, लेकिन उस वक्त हमारी भी खुद की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम जितने भी शरणार्थी है उनका बर्डन ले पाए, लेकिन फिर भी भारत ने लिया और बहुतों को कह सकते हैं यहाँ पे सिटीजनशिप भी दे दी गई है। लेकिन अब जब वो बात रोहिंग्या शरणार्थियों पे आई, तो उसके बाद थोड़ा रुक जाना पड़ा उसका फैसला, उसके पीछे डिस्कशंस, डिबेट्स, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, क्योंकि ये सच में बहुत अच्छा ही है, कहते हैं आपको समझने अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि किस तरीके से जो है जनसंख्या की प्रॉब्लम के साथ सरकारें या स्टेट जो है वो डील करते हैं। चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं कि किस तरीके से जो प्रवास है वो हमने तो एक तो डिस्कस कर लिया स्टेट में, लेकिन ये प्रवास होते किस किस वजह से हैं। एक तो रीज़न ये हो गया कि हाँ फैसिलिटीज की वजह से, दूसरा फैसिलिटीज ना होने की वजह से भी कई बार हमारे, ये दो रीज़न है इसके भी। एक तो अगर हमारे पास, हमारे देश में हर चीज़ है, हर चीज़ है अगर, और जहाँ पे नहीं होती है वहाँ हमने पढ़ाई अगर की है तो हम खुद डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग कह सकते हैं ज़्यादा की उम्मीद में, क्योंकि उन्हें अपने करियर में बहुत ज़्यादा करना होता है, भारत छोड़कर विदेशों में पढ़ने जाते हैं और फिर उधर ही नौकरी करते हैं और उधर ही बस जाते हैं, ये कहलाता है ब्रेन ड्रेन। और दूसरा कि जिस जगह पे बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है, आपने पढ़ने के लिए वहाँ से कहीं और प्रवास किया है और आपने वापस जाकर अपना जो भी कह सकते हैं गांव था उसमें डेवलपमेंट लाई, तो वो एक अच्छा प्रवास हुआ। प्रवास से इफ़ेक्ट और क्या पड़ता है कि अगर पूरे परिवार सहित, जैसे कि उत्तराखंड का एग्जाम्पल लूँ मैं, तो वहाँ से जितने लोगों ने प्रवास किया है अब वो अपने गाँवों में दोबारा रहने के लिए नहीं जाते, वो हॉलीडेज पे जाते हैं पर वो रहने के लिए नहीं जाते। बिहार के भी कुछ इलाके ऐसे हैं कि गांव के गांव खाली हो चुके हैं, अब वहाँ कोई रहता नहीं है, वहाँ पे हॉलीडेज के लिए जाते हैं पर वहाँ पे कोई रहता नहीं है। इस तरीके से प्रवास से, और शहरों में आपको हर स्टेट के लोग मिल जाएंगे, चाहे गुजरात, बंगाल, बिहार, केरल, कर्नाटक, हर प्रकार के। क्यों? क्योंकि वो सब कहीं ना कहीं अपने अपने कहते हैं गांवों से प्रवास करके इधर आए हैं फॉर अपॉर्चुनिटीज। कुछ वापस से अपने गांव चल जाते हैं और कुछ यहीं रहते हैं। तो ये एक तरीके से क्या कर रहा है, डिसबैलेंस कर रहा है चीज़ों को। डिसबैलेंस क्यों? क्योंकि वहां पे उन्हें पूरी चीज़ें नहीं मिल पाई, पूरी फैसिलिटीज नहीं मिल पाई। क्या कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम तो ये हुई कि गवर्नमेंट वहां की फेल रही डेवलपमेंट लाने में, और दूसरी वहां के लोगों ने भी डेवलपमेंट की चाह जो थी वो नहीं रखी। तो ये दो रीज़न हो सकते हैं प्रवास के। जो बेसिक रीज़न होता है वो जियोग्राफिकल रीज़न है कि अगर कहीं पे पहाड़ पठार चीज़ें हैं और कहीं एकदम समतल भूमि है तो लोग वहाँ निवास करने चले जाते हैं। और दूसरा रीज़न है इसका कि अगर आजीविका नहीं मिलेगी तो लोग वहीं जाएंगे जहाँ उन्हें नौकरी मिलती है और वहीं रहेंगे। चलिए अब इसके, अगर मैं वैसे बहुत अच्छे टॉपिक वाइज या कह सकते हैं पॉइंट वाइज, तो इसके सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है और प्राकृतिक आपदा भी है। जहाँ पे भूकंप या भूचाल की बहुत ज्यादा संभावनाएं बनी रहती हैं, लोग वहां से भी प्रवास कर लेते हैं, जैसा कि उत्तराखंड में हुआ भी है। उसके बाद बात करती हूँ अनुकूल जनसंख्या। अब ये अनुकूल जनसंख्या क्या होती है, मैंने बताया था जनसंख्या एक ऐसा टर्म है जिसको हम नेगेटिव या पॉजिटिव में कह सकते हैं लिख नहीं सकते, फीचर नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक न्यूट्रल टर्म है जिसको हम दोनों ही कह सकते हैं, तराजू के दोनों तोल में देख सकते हैं। इससे बात करते हैं कि जनसंख्या अनुकूल उतनी, जिसमें एक बात ये होती है या नारे के थ्रू अगर मैं बताऊं, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये नारा हमें बताता है कि अनुकूल जनसंख्या टर्म का रियल मीनिंग क्या होता है। ये पॉलिसी भी इतनी ज्यादा फेमस हुई थी, इंट्रोड्यूस हुई, फेमस भी हुई, और फिर भी अभी तक कह सकते हैं एप्लीकेबल फिर भी नहीं। इस पॉलिसी का फायदा ये है कि अगर इस प्लान के थ्रू लोग इसे फॉलो करें, जिसमें हम दो हमारे दो है, तो जनसंख्या में एक कंट्रोल आएगा। हाँ, हमारे जितने भी रिसोर्सेज है वो बढ़ नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे जो है हम इसमें सुधार करके लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड लोगों के लिए ठीक रहेगा। और जो हमें आज की डेट में प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग रिसोर्सेज, कि हमारे पास हमारे को पेड़ लगाने के लिए हमारे घर, अगर आप देखें तो जिस पुराने जमाने की हम बात करते हैं तो हमारे घर इतने बड़े, आंगन, ये सारी चीजें हुआ करती थी। अगर मैं पूछूं कि आज शहरी इलाकों में आप ये सारी चीजें सोच भी सकते हैं कि आपके घर बड़ा हो या उसमें आंगन हो, उसमें कह सकते हैं गराज हो, उसमें हर चीज हो? नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं शहरी जीवन में आने के बाद हम इतने ज्यादा सिकुड़ चुके हैं, क्योंकि जमीनें जो हैं वो बहुत ज्यादा आसमान छूती जा रही हैं उनके प्राइजेस। और उसके अलावा यहाँ पे लोग इतने हैं, जनसंख्या घनत्व इतना है कि आप यहाँ पे वैसे ही तरीके से जैसे पहले रहा करते थे नहीं सोच सकते, क्योंकि जनसंख्या बढ़ चुकी है। तो उसमें जो ये नारा है हम दो हमारे दो, ये बहुत अच्छा कह सकते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए की नज़र से बहुत अच्छा है। इसके लिए बहुत ज़्यादा कदम भी उठाए गए हैं नारे के थ्रू, इसे बहुत ज़्यादा जन जागरूकता फैलाई गई है, लेकिन इसके वृद्धि जो है उतनी नहीं देखी गई है, पर उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। जनसंख्या जो है लगातार बढ़ रही है, लेकिन संसाधन नहीं बढ़ रहे। इस बीच सबसे ज़्यादा फिर भी कह सकते हैं एक हताशजनक बात यही है। राजस्थान की अगर बात करें तो 8 जिले हैं, जनसंख्या वृद्धि है जो 17.6% है, और जो कि कम रही है, जैसे झुंझुनू, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़ इस जगह पे है, इस जगह पे ये औसतन फिर भी कम रहा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात इसे भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि लिंग मतलब कि जेंडर, और जेंडर एक सोशल टर्म है, मतलब कि सोशल हमारे समाज के थ्रू दिया गया है जेंडर। और उसके बाद अगर हम बात करें अनुपात तो रेशियो, हम जब बात करते हैं लिंग अनुपात की, तो जब पूरे एरिया हम पूरे इंडिया का हर स्टेट को एनालाइज करते हैं कि हर स्टेट में 1000 boys is equals to कितनी गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब कि जहाँ पे 1000 boys is equals to 1000 girls है वहाँ पे इक्वालिटी है, इसमें वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर रेशियो जो है वो ठीक है, एकदम समांतर है। जहाँ 1000 boys और नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा है वहाँ पे लड़कियों की जो संख्या है वो ज़्यादा है, और जहाँ पे ये कम है, 1000 से कम है लड़कियों की संख्या, वहाँ पे जो लिंग अनुपात है वो लड़कियों का कम है। अगर कुछ गिने चुने मैं राज्य के नाम बताऊं जहाँ पे लिटरेसी रेट, मतलब कि वहाँ पे जो है साक्षरता की दर ज़्यादा है, बस वहीं पे लड़कियों के कह सकते हैं रेशियो भी ज़्यादा है। उसके अलावा भारत के आधे से ज़्यादा राज्य जो है वहाँ पे रेशियो कम है। 2011 की जब जनगणना हुई थी तो वहाँ पे हमारे राजस्थान क्षेत्र में 928 ये अनुपात था 1000 के बराबर में, जो कि बहुत कम है। आप खुद देखिए कि 1000 लड़कों की जनसंख्या में 928, इतनी लड़कियों की जनसंख्या कम क्यों है और इसके पीछे क्या रीजंस है? आज हम 21वीं सदी में हैं फिर भी। इसके अलावा बात करूं अन्य राज्यों की तो वहां पे भी, जबकि 6 वर्ष अगर पहले मैं राजस्थान की ही बात करूं तो ये और ज़्यादा कम थी, ये कुछ 800 की संख्या पे थी, और अब ये बढ़ के 928 है। हालांकि ये प्रोग्रेस है, लेकिन फिर भी ये प्रोग्रेस नहीं है। जबकि हमने नारा दिया है 2015 में भारत सरकार ने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये एक नारा सबके मुंह पे बैठ भी गया है, लेकिन आप इसे खुद अपने कह सकते हैं अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं क्या क्या इससे इफेक्ट पड़ा है और क्या क्या इससे इफेक्ट नहीं पड़ा है। ये एनालाइज करने वाली चीज है, इसके बारे में भी सर्च करिए कि क्या इस नारे से जो है कितना इफेक्ट पड़ा है, नारा इन दी सेंस इस प्रोग्राम से क्या इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया गया था और हाँ उससे इफेक्ट पड़ा है, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से क्या इफेक्ट पड़ा है ये भी आप बताएंगे कि भारत सरकार ने, या और ये किसके लिए है, जैसा कि साउंड कर रहा है महिला सशक्तिकरण के लिए है, और इसका उद्देश्य है कि बेटियों को पहले बचाया जाए, मतलब इनकी भ्रूण हत्या ना की जाए, और इन्हें कह सकते हैं पढ़ाने से पहले ही इनकी छोटी एज में शादी ना करा दी जाए, और इसके अलावा इन्हें पढ़ाया जाए, क्योंकि ये एक बहुत फेमस लाइन है कि जब एक बेटा पढ़ता है तो वो खुद सिर्फ एक वही एजुकेट होता है, लेकिन जब एक बेटी पढ़ती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। अब बात करते हैं कि क्यों इस तरीके के क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये जो नारा है वो दिया गया। हालांकि ये बहुत ही वेल नोन टॉपिक है, ये बहुत सालों से, बहुत ज्यादा पुराने सालों से इसके बारे में पढ़ा और बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी जैसे कि महिलाओं में एकदम कह सकते हैं बिगनिंग से, फॉर द बिगनिंग भ्रूण हत्या, सबसे पहले उनको पेट ही में मार दिया जाता था, अगर वो पैदा हो गए उसके बाद भी मार दिया जाता था, इसके बाद अगर वो फिर भी बढ़ गए तो उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, वहां फिर एक तरीके से उन्हें शोषण किया जाए उनके ऊपर, अगर वो फिर भी पढ़ लें तो फिर उनकी शादी कर दी जाती थी बहुत छोटी उम्र में, अगर वो भी हो जाए तो फिर दहेज प्रथा, फिर सती प्रथा, और अगर विधवा हो जाए तो उसके बाद भी, मतलब कि आप पूरी लाइफ अगर देखें पुराने अपने टाइम में तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को छोड़ दिया गया हो कि हाँ भाई अब तुम यहाँ पे खुश रह सकती, नहीं, हर जगह उन्हें कह सकते हैं टॉर्चर करने के लिए जितने रीति रिवाज बनाए जाते थे सब बनाए जाते थे। तो इन सब चीजों को जब इतने सालों तक ये सारी चीजें अत्याचार जो है लगातार होते जाएंगे तो बाद में जा करके कम से कम 21वीं सदी में तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्लान्स जो है बनेंगे। हालांकि अभी भी औरतों की कोई कंडीशन इतनी ठीक नहीं है, पर ये कहूंगी कि औरतों की ही नहीं, अब इस समय पे सबकी ही कंडीशन बहुत खराब है। तो इसीलिए जो प्रोग्राम है इसके थ्रू बेटियों को जो है थोड़ी सुरक्षा दी जा रही है कि वो भी बराबरी कर सके लड़कों की, जो लिंगानुपात जो इतना डाउन हो गया आधे से ज्यादा स्टेट्स का, वो थोड़ा बैलेंस्ड हो। बात करते हैं साक्षरता की, साक्षरता लिटरेसी रेट कितना कह सकते हैं, साक्षरता एजुकेशन नहीं है। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि वेल लिटरेट होना और वेल एजुकेट होना दो अलग चीजें हैं। वेल लिटरेट होने का मतलब है कि आपको लिखना और पढ़ना आता है, जबकि वेल एजुकेशन का मतलब है, वेल एजुकेटेड का मतलब है कि आपको चीजें लिखते पढ़ते हुए समझना भी आता है और आप उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया भी देते हो। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी चैप्टर आपका जो मैं पढ़ाती हूँ उसमें हर टॉपिक को आप खुद से समझिए, एक अपनी राय बनाइए, उस चीज के बारे में जानिए, अगर कोई उसके बारे में आपको कोई गलत राय भी बना रहा है वो मत सुनिए, आप अपनी राय बनाइए, बेशक आप किताब के जो वर्डिंग्स हैं उसकी तरह ही आंसर लिखिए, पर हाँ आप अपना खुद का विजन बनाइए, क्योंकि जो चीजें हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव वे में, दोनों में। उसके बाद बात कर लेते हैं हम अपने फिर से बैक टू टॉपिक कि धार्मिक संरचना क्या है हमारे राज्य की, राजस्थान की। तो यहाँ पे सारे धर्म जो है वो माने जाते हैं, भारत में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे कोई एक धर्म को ही सबसे ज्यादा माना जाए या सबसे ज्यादा वो धार्मिक राज्य हो, ऐसा नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसीलिए यहाँ पे सारे जितने भी राज्य हैं वो भी धर्मनिरपेक्ष हैं। यहाँ पे हाँ ये है कि हर स्टेट में एक भाषा की वैरायटी है जो कि यहाँ का कल्चर है, यहाँ की संस्कृति है, इस चीज को हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि एक कह सकते हैं पुराने जमाने की धरोहर है हमारे पास, इसीलिए। और ये यहाँ की खूबसूरती भी है, जैसे राजस्थान की भाषा जो है वो तो राजस्थानी है, जिसमें बहुत सारी जो बोलियां हैं लोकल बोलियां उसका मिक्सचर है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, भागड़ी, डोडांडी, शेखावटी, जो कि कह सकते हैं हर कम्युनिटी ने अपनी एक लैंग्वेज बनाई है। हालांकि सब में एक चीज जरूर है कि सबकी खड़ी बोलियां हैं, ये चीज है, और सबकी बोली लगभग एक दूसरे से मिलती है, लेकिन कम्युनिटी डिवीजन है, इसीलिए ये जो थोड़ा बहुत कह सकते हैं हेर फेर है भाषा में वो है, लेकिन इन सभी का हम कह सकते हैं मिक्सचर राजस्थानी भाषा हम कहते हैं। बात करते हैं अनुसूचित जनजातियों की, तो ये भी कह सकते हैं इस राजस्थान स्टेट की एक खूबसूरती ही है, क्योंकि ये जो लोग हैं जो इस जगह पे रहते हैं, जो कि हमारे जितने भी जिले जिनके नाम मैंने आपको बताया कि यहाँ बहुत घनी आबादी है वहीं पे रहते हैं, और ये जो बेसिक तरीके से बताऊं तो ये वन के जितने भी उत्पन्न चीजें हैं उन पे डिपेंडेंट है, और ये अपना जो कल्चर है ना वो बहुत अच्छी तरीके से वेल मेंटेन्ड किए हुए हैं, ये सबसे एक अच्छी बात है। यहाँ पे जितने भी अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से ऐसे मेन जनजातियां हैं जो यहाँ पे रहती है, तो गरासिया, मीना, नायका, गरासिया, ये जितने भी हैं, भील, ये सारी जनजाति यहाँ पे मिलती हैं, मिलती इन दी सेंस यहाँ पे यहाँ जनजातियों के जो है लोग रह जाते हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ पे सबसे जो पुरानी जनजाति है वो भील है। भील यहाँ पे उनको कह सकते हैं भीलो भी कहते हैं, इन्हें द्रविड़ या मुंडा भाषा शब्द जो है वो भी इन्हीं के लिए यूज किए जाते हैं। दक्षिण में इन्हें द्रविड़ कहा जाता है या मुंडा कहा जाता है, लेकिन राजस्थान में बागड़ी और भीली भाषा। ये रहते कहाँ पर हैं? जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, उदयपुर, जितने भी स्टेट्स के मैंने नाम आपको बताए थे ये उधर ही रहते हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ शब्दावलियों की, क्योंकि हमने जब भी हम कोई चैप्टर बुक की पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उसमें बहुत हैवी लैंग्वेजेस होते हैं। हालांकि इस शब्दावली में कुछ एकदम कह सकते हैं नॉर्मल जितने वर्ड्स हैं, आवास, प्रवास, वनोपज, यही सिर्फ भाषाएं बताई गई हैं, इसके अलावा ज्यादा शब्दावली में नहीं है। लेकिन आपको अगर कोई लगता है कि भाषा जिसमें ये वर्ड जो है वो थोड़ा टफ है, उसका मतलब जानिए और उसको अपने आंसर राइटिंग्स में जो है यूज कीजिए। इससे आपकी वोकैबुलरी तो अच्छी होगी ही, साथ में आपको जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे उसकी पकड़ भी बहुत अच्छी बनेगी। चलिए इसी के साथ कीप लर्निंग और रिविजन करते रहिए। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।